खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
ओम शांति। अभी के सेशन का हमारा टॉपिक है सर्वस्थिति से परस्थिति पर विजय। इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में है हमारे आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी। आप यहाँ माउंट आबू में ही समर्पित हैं। आपने 1996 में अपना जीवन बाबा के यज्ञ में समर्पित किया है और आपकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपने साकार बाबा के अंग संग का बहुत ही अनुभव किया है। बाबा ने जब शरीर छोड़ा था, अव्यक्त हुए जब बाबा, तो उससे दो दिन पहले आप मधुबन में आए और जो भी बाबा के उस समय कैसे बाबा ने शरीर छोड़ा और कैसे बाबा का हाथ उस समय दादी प्रकाशमणि के हाथ में था, कैसे बाबा ने उस समय विजय प्राप्त की उस परिस्थिति के ऊपर, कैसे बाबा उस समय नष्ट मोहा थे, ये सब आपने अपनी आंखों से देखा। तो आप सबको आज इसके ऊपर ही प्रकाश, हमारे को ये सब बताएंगे, इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे कि कैसे हम भी परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करें। थोड़ा सा इनका मैं लौकिक में भी बताना चाहूंगी। तो इनका जन्म देहरादून में हुआ है। तो इन्होंने जो इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस है धनबाद में, वहां से इन्होंने मास्टर्स डिग्री प्राप्त की और जो ONGC जो है हमारी कंपनी जो माइन ये गैस और ऑयल्स की, वहां पे आप ऑफिसर पद पे नियुक्त थे और वहां से रिटायरमेंट लेकर के ये आप 1996 में यज्ञ में समर्पित हुए। लेकिन ज्ञान इन्होंने जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे तब उन्होंने 1962 में आपने बाबा का ज्ञान प्राप्त किया। तो आप जैसे हमारा जो साइंटिस्ट एंड इंजीनियर विंग है उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और इसके अलावा जो हमारे अवेयरनेस कैंपेन चलते हैं, एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन चले जो हमारे टाइम टू टाइम इंडिया में, उसके भी आपने ही कोऑर्डिनेट उनको भी किया, ऑर्गेनाइज किया। और जितने भी आप हमारे जितने फॉरेन कंट्रीज हैं और इंडिया में भी बहुत से इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कंपनीज में आपने कम से कम 500 लेक्चर्स अभी तक डिलीवर किए हैं। तो ये बहुत बड़ा कार्य आपने किया लोगों के बीच में अवेयरनेस लाने के लिए। और आप तो, आपको तो नहीं मालूम भराता जी अमृतसर में भी आए। तो हम तो बहुत लकी हैं कि बाबा के यज्ञ के जितने भी महान रत्न हैं उनके कदम हमारे अमृतसर में भी पड़े हैं। तो अभी हम उनके मुखारवन से, भाई जी के मुखारवन से सुनेंगे।
ओम शांति। एक बार हम सब मिल करके उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसे जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे और ब्रह्मा बाबा के साथ सभी वत्स मिल करके ब्राह्मण वत्स ओम शांति कहा करते थे। अंदर एक गहरी श्वास लेकर के और फिर उस श्वास को धीरे धीरे निकालते हुए हम ओम ध्वनि करेंगे और फिर दूसरी श्वास लेकर उसके निकालते हुए शांति की ध्वनि। ओ Oh. शांति। हम सबके सामने ब्रह्मा बाबा ही एक ऐसे रोल मॉडल हैं, एक ऐसा लक्ष्य है इस संगम युग पर, जिनके कदम पर कदम रखते हुए हम सभी अपनी मंजिल जो कर्मातीत अवस्था की है उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा आज का विषय है, स्वस्थिति के द्वारा परिस्थिति पर विजय, सदा हम विजयी बन करके रह सकते हैं। विजय शब्द ऐसा है जो सभी को खुशी में, उमंग, उल्लास, आनंद से भर देता है, क्योंकि विजय के अंदर वो समाया होता है जो हमारा लक्ष्य होता है, और उसकी प्राप्ति जब हो जाती है उसी को ही विजय कहा जाता है। और परिस्थिति, यह तो संगम युग का एक बहुत बड़ा खजाना कहें, इसे कह सकते हैं खजाना या नहीं कह सकते, कैसे कहेंगे? खजाना तो खुशी देता है, और जब परिस्थिति आती है, चाहे तन की हो, मन की हो, धन की हो, संबंध की हो, कोई समय कोई भी पेपर आता है तो वो खजाना है या प्रॉब्लम है? हाँ? क्योंकि कोई भी परिस्थिति आती है, अगर वो परिस्थिति हमें अपने लक्ष्य की तरफ ले जाती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि परिस्थिति या पेपर नहीं आएगा तो स्टूडेंट कैसे हायर क्लास में, ऊंची क्लास में चढ़ेगा? परिस्थिति पेपर को पास करेगा तभी तो उसे नेक्स्ट क्लास मिलेगी। लेकिन ये कब होगा? जब उस परिस्थिति पर हम विजय प्राप्त करेंगे। और इसीलिए ये आज का जो विषय है, स्वस्थिति के द्वारा परिस्थिति पर विजय। ब्रह्मा बाबा कैसे करते थे उस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस आज के विषय को अपना आगे बढ़ाएंगे। तो पेपर की बात हो रही थी, मानो तन का पेपर है, तो ब्रह्मा बाबा के सामने कौन सा तन का पेपर आता था? खांसी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की आयु भी काफी थी। हाँ, हम देखते थे 90+, 93 ईयर की आयु तक काफी, भाई शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है, तो इसीलिए, और 5 तत्व भी तमो प्रधान हो गए हैं, तो जब कभी ब्रह्मा बाबा को कोई खांसी आती थी, और कई बार तो बाबा की आंखें भी गीली हो जाती थी, और खांसते खांसते हम सबको तो ऐसा लगता था कि जैसे बाबा को बहुत कष्ट हो रहा है, तो खांसी रूपी जब परिस्थिति आती थी तो बाबा क्या करते थे? दवाई निकाल के खा लेते थे, वो भी तन के लिए, वो भी चाहे आवश्यक है वो भी कर सकते हैं, लेकिन बाबा क्या करते थे? स्वस्थिति को कैसे मजबूत करते थे? जब खांसी रूपी परिस्थिति पहले आती थी तो वो जैसे लगता था हावी हो रही है, खांसी आती थी, तकलीफ होती थी, लेकिन बाबा क्या करते थे? हिस्ट्री हॉल तो देखा ही है ना आपने, बाबा की संदली के पास ही ट्रांसलाइट का पिक्चर रखा हुआ है, लक्ष्मी नारायण का, श्री कृष्ण का, तो बस बाबा तो एकदम, देखो बच्चे अभी तो ये खांसी है, पुराना शरीर है, 5 तत्वों का, पुरानों का बना हुआ है, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा मिश्नु कृष्ण बनेगा, कृष्ण ट्रांसलाइट का, नए तत्व होंगे, सारे दुनिया खुशी में होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, और बस बच्चे हमेशा यही समझो कि बस हम नई दुनिया में जा रहे हैं, इससे बस प्रैक्टिकल करके बाबा दिखाते थे, देखो बच्चे बस बाबा इस दुनिया में जाएगा, विष्णु कृष्ण बनेगा, और बच्चों को क्या करना चाहिए, खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में भी बाबा हो मैं ऐसा जाके बनूंगा, तो जैसे दुख की बात खांसी की बात एकदम भूल जाती थी, और बाबा तो खुशी में आते ही थे, साथ ही साथ सभी बच्चे भी खुशी उमंग उल्लास में आ जाते थे, और खांसी कहां गई पता भी नहीं चलता था। तो देखो ये खांसी रूपी परिस्थिति आई, लेकिन बाबा ने स्वस्थिति इतनी मजबूत करी संकल्पों के आधार पर। तो जो कहते हैं ना संकल्प बहुत बहुत बड़ा खजाना है, तो कोई भी परिस्थिति आए तो उसे संकल्पों के आधार पर अपनी स्वस्थिति को हम इतना मजबूत करते जाएं कि वो परिस्थिति सेकेंडरी हो जाए, गौण हो जाए, छोटी हो जाए, हमारी स्वस्थिति ऊंची हो जाए। दुनिया वाले भी जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम तो रचयिता हैं, विज्ञान साइंस तो हमारी रचना है। इसीलिए ये वो कैसे करते हैं विज्ञान वाले, हा? आपने एक साइंटिस्ट का नाम भी सुना होगा ना, एमोटो करके, मतलब वो यहां भी उसके ऑफिस के लोग, उसका असिस्टेंट आया था, और बहुत प्रसिद्ध है ये एमोटो साइंटिस्ट। ने क्या करा, दो गिलास में पानी लिया, सुना होगा, तो वो पानी लिया और एक गिलास के ऊपर निगेटिव चीज लिखी, आई हेट यू, मैं आपसे घृणा करता हूं, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, और आदि आदि निगेटिव चीजें, और दूसरे गिलास पर बड़ा पॉजिटिव चीज लिखी, आई लव यू, और आओ हम सब मिलकर के नई दुनिया बनाएं। और उसमें क्या था, उसके अंदर ही उसने पॉजिटिव थॉट्स दिए, जिस पानी दोनों में एक जैसा लिया और पॉजिटिव थॉट्स दिए कि हे जल, आप ही तो जीवन हो, जीवन के निर्माता हो, आपके बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो उसी गिलास पर पॉजिटिव थॉट्स दिए और उसके ऊपर नाम भी लिखा, उसके ऊपर मानो मदर टेरेसा, और जो निगेटिव वाला था उस पर नाम लिखा हिटलर, जिसको सुनते ही मतलब विचार भी ऐसे आते हैं क्रुएल्टी के। तो ये पॉजिटिव, जिस गिलास के ऊपर उसने पॉजिटिव विचार बहुत दिए थे, और दूसरे गिलास जिसमें निगेटिव विचार, मैं तुमसे घृणा करता हूं, आई विल किल यू, आप तो मनुष्य का जीवन ले लेते हो सुनामी के रूप में, बाढ़ के रूप में, आदि आदि, और दूसरे में बड़े पॉजिटिव थे, हे जल, आप तो देवता हो, जीवन देने वाले हो। तो उसके बस जब बाद में क्रिस्टल बनाए गए तो वो ही पानी तो वही था एक, लेकिन जिसको पॉजिटिव थॉट्स दिए गए उसको उसके क्रिस्टल बड़े अच्छे ऑर्नामेंट शेप के बने, हीरों के शेप के मोती और ऐसे ऐसे शेप, और जो निगेटिव विचार जिन्हें दिए गए उसके क्रिस्टल बड़े ही भयंकर विभत्स रूप के और इररेगुलर शेप के थे, जिसका कि कुछ भी पता नहीं होता था। तो देखो वही पानी है, वही बराबर के डिस्टेंस पर रखे हैं, लेकिन हमारे विचारों का, वो स्वस्थिति का प्रतीक है हमारे विचार, हमारे विचारों का जब बाहर के गिलास पर इतना प्रभाव पड़ता है, बाहर पानी जो रखा है, तो जो पानी हमारे शरीर के अंदर है उस पर तो 24 घंटे जो साथ में रहता है उस पर तो कितना ना प्रभाव पड़ता होगा। ये पानी तो फिर भी दूर है, लेकिन जो पानी हमारे शरीर के अंदर है उसके अंदर कितना प्रभाव पड़ता होगा। तो इसलिए अब ये देखना है कि जो बाबा भी कहता है ना, हमारे विचारों का हमारे अंदर स्वास्थ्य के ऊपर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पॉजिटिव विचार करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होगी, पॉजिटिव वातावरण बनेगा, जो भी उस वातावरण के अंदर आएगा, मधुबन के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बहुत है, जो भी इस वातावरण में आता है शांति का, प्रेम का, पवित्रता का अनुभव करता है, क्यों, पॉजिटिव एनर्जी है। हमारे रहने वाले जो है पॉजिटिव विचार करते हैं, 3:30 बजे से उठकर पॉजिटिव वातावरण बनाने में मदद करते हैं इस कारण से। तो देखो विचारों का कितना बड़ा प्रभाव, तो स्वस्थिति बनाना वो हमारे विचार पर, हमारे ऊपर निर्भर करता है और कोई नहीं। तो परिस्थिति तो आएगी, हमें संपूर्ण बनाने के लिए आ रही है। ब्रह्मा बाबा के सामने तो कितनी कितनी बड़ी परिस्थितियां आती थी। हमें याद है एक बार हम यहाँ थे, शायद 66 हाँ, जब हमारी प्रदर्शनी बनी हुई थी और कलकत्ते में प्रदर्शनी करी थी, तो कलकत्ते में आर्य समाजी भी थे, बस उन्होंने देखा, उन्होंने प्रदर्शनी को नुकसान करने के लिए उस पंडाल में आग लगा दी, सारा जल के राख हो गया, खत्म हो गई प्रदर्शनी भी पंडाल भी। तो वहां से समाचार आया बाबा के पास, तो यहां उस समय हमारे कुछ तीन वकील भाई होते थे कानपुर के, बहुत बड़े संतराम जी, त्रिलोक चंद जी, मोतीलाल जी, बहुत बड़े वहां के वकील थे, और वहां के लोगों ने कुछ उसका फोटो वगैरह भी खींच के भेजे। तो हमारे वकील भाइयों ने कहा कि बाबा इन पर हमें केस करना चाहिए, हमारे पास सब प्रूफ है और हम 100% जीतेंगे, कोई ऐसे प्रूफ तो एकदम कोर्ट स्वीकार करे। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, उन्हें नहीं मालूम कि उन्होंने क्या किया है, और बाप कभी भी बच्चों के ऊपर ऐसा केस नहीं कर सकता, उन्हें क्या मालूम, उन तो अज्ञानी है कि ये ईश्वरीय कार्य है। नहीं बाबा ऐसा नहीं, बाबा उन्हें माफ करता है, और हाँ आगे से तुम बच्चों को ज्यादा अटेंशन रखनी है, इंश्योरेंस करा दो, उस पर ध्यान दो, सिक्योरिटी गार्ड रखो जिससे कोई भी ऐसी शैतानी न कर सके। तो देखो ये बाबा के मन का पेपर था, वो तो तन का खांसी का, ये मन का कितनी बड़ी। उस समय तो हमारा यज्ञ भी बहुत छोटा था, यज्ञ की प्रॉपर्टी भी कुछ नहीं हुआ करती थी साधारण, बड़ी मुश्किल से नई प्रदर्शनी एक बनाई थी, वो भी जल के राख हो गई और पंडाल भी सारा जल गया, लेकिन बाबा ने ना मन के ऊपर उसका प्रभाव नहीं आने दिया। तो ऐसे ही पेपर हमारे सामने आएंगे, बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमें मालूम है, लेकिन समय के प्रभाव में थोड़ा थोड़ा ही बताते जाएंगे। तो ऐसे परिस्थितियां आएंगी, तन के मन के संबंध के, तन के सब पेपर आएंगे, लेकिन उसका प्रभाव हमारे ऊपर वो न पड़े एडवर्स, उल्टा कि काफी दिनों तक समय तक हमारी शक्तियां वेस्ट होती चली जाए, लीकेज होते चले जाए, और हमें न योग लगे न ज्ञान लगे, ऐसा कुछ ना हो, ये बहुत आवश्यक है। इस कारण से अभी ये देखते चलना है कि कोई भी पेपर आए हम कैसे अपनी स्वस्थिति से उसे पार करें, परिस्थितियों के रूपी पेपर को। देखो जब पेपर आता है, विघ्न आता है कोई, तो विघ्न और ये माया, इसमें क्या अंतर है, क्या अंतर है विघ्न और माया में? सब बाबा के पुराने बच्चे बैठे हैं, हाँ। और देखो कोई भी पेपर आता है ना, वो पेपर का स्वरूप तो बाह्य होगा, जैसे ये प्रदर्शनी जलाई, अब ये पेपर का स्वरूप बाह्य है, विघ्न बाहर से आता है लेकिन माया अंदर से आती है, माया हमारी कमजोरी का नाम है। विघ्न तो आया लेकिन जो कमजोर होगा ना वो माया के सामने, ये विघ्न के सामने रिटेलिएट करेगा, और ऐसा कि बदला लेने की भावना होगी उसकी, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भावना ऐसे होगी, लेकिन जो ज्ञानी तू आत्मा जिसने ज्ञान को समझा समाया हुआ होगा ना, सोच समझ करके वो उस माया के प्रभाव में नहीं आएगा, यानी माया क्या, अपनी कमजोरी, तो अपनी कमजोरी के वशीभूत होकर के वो रिटेलिएट या बदला नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि एक गलत है, जैसे कहते हैं ना गुलजार दादी बड़ा अच्छा कहती हैं, बताते हैं कि कोई बाबा दादी के सामने या बाबा के सामने आया कि बाबा उसने ये क्रोध किया, तो उन दोनों में लड़ाई, क्रोध किया तो मुझे क्रोध आ गया। ठीक है उसने क्रोध किया, वो तो गलत किया, लेकिन तुम्हारा क्रोध करना वो कहां तक उचित है? लॉ को अपने हाथ में ले लिया। तो इसलिए जो लॉ है वो तो सबके लिए एक जैसा है, इसलिए ये जो पेपर आते हैं, ये पेपर को हमें कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर अगर आता है तो ये देखना है कि हमारे अंदर का खजाने जो है ना वो लीक ना हो जाए, क्योंकि अंदर का खजाना जब लीक होना शुरू हो जाता है, शक्तियां खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, तो क्या होता है, हम हार जाते हैं। जो स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति पर विजय, वो विजय हम हासिल नहीं कर पाते। तो ये देखने चलना है, कोई भी पेपर आए कि मेरा कोई खजाना लीक तो नहीं हो रहा है, मैं खजाने से खाली तो नहीं होती जा रही हूं आत्मा, ये बहुत आवश्यक है। कौन कौन से खजाने हमारे पास, बहुत बाबा ने खजाने बताए हैं, हाँ एक एक, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, संकल्पों का, समय का, खुशी का। देखो ये वाणी का भी खजाना है, ये जितना खरसते हैं ना उतना शक्ति खत्म होती जाती, इसीलिए वो लिखा हुआ मिलता है ना, क्या स्लोगन, कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो सोच के। कर्मों का भी खजाना है, कर्म में तो सबसे ज्यादा खजाना लीक होता है, और तो समय, संकल्प, मन, वाणी, कर्म, गुण, शक्ति, सम्मान, ये जितने हैं ये सारे के सारे खजाने, और अल्टीमेटली इनका संबंध खुशी के खजाने से। तो अगर जहां हमारी खुशी कम होती है, गायब होती चली जाती है, इसका मतलब हमारे खजाने लीक हो रहे हैं। तो क्या करें फिर, कैसे खजानों को लीक होने से बचाएं, ये मालूम होगा। ये सब जो खजाने हैं ना, तो जितना खजानों के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा, लीक नहीं होंगे खजाने, तो क्या होगा, हम हर परिस्थिति पर अपनी स्वस्थिति से विजय पाते चलेंगे। तो उसके लिए क्या क्या करें, मुख्य 6-7-8 बातें हैं जो ध्यान में रखने की हैं, और उन बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो परिस्थितियां आएंगी, पेपर आएंगे, लेकिन हम हमारे खजाने लीक होने से बच जाएंगे, हमारा अटेंशन तुरंत चला जाएगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, हमारा खजाना लीक हो जाता है उसके बाद अटेंशन जाता है, लेकिन अगर बैंक से बैलेंस ही निकल गया, किसी ने फ्रॉड करके निकाल ही लिया, उसके बाद तो बचा क्या, अब पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, कहते हैं ना। इसीलिए उसके पहले ही पता चल जाए, परिस्थिति आई, हमने क्रोध कर लिया, बहुत कुछ बोल दिया, झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, उसके बाद अगर ध्यान आया कि भाई बाबा तो कहता है क्रोध नहीं करना चाहिए, क्या फायदा होगा, जो विकर्म बनना था वो तो बन गया। आवश्यकता इस बात की है कि परिस्थिति आए उससे पहले ही हम सावधान हो जाएं और वो विकर्म करने से, वो खजाने को लीक होने से बचा लें, जिससे कि हम शक्तियों के भंडार बने रहे। उसके लिए क्या, पहली बात, रोज अपनी तन और मन की दिनचर्या को सेट करो, अमृत वेले करो बहुत अच्छा है, या उससे पहले सोने की जो समय है, पहले दिन का नाइट में, जैसे रोज दिनचर्या बनाते हैं माइंड में होती है, कोई प्रोग्राम होता है ना, मानो मेला है, प्रदर्शनी हो रही है, कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस सेंटर पे होने वाली है इधर, तो वो होती है कल हमें ये मीटिंग करनी है, ये सामान लाना है, पंडाल वाले को बोलने हैं, बिजली वाले को ये करना है, तो जैसे तन की भी दिनचर्या होती है, साथ साथ मन की दिनचर्या को भी सेट करें कि सुबह जो है 4 बजे से 4:45 का टाइम जो है ना, वो मेरा अपने को अपना शक्ति भरने का टाइम है, उस समय बस बाबा से मुझे रूहान करनी है, 5 धाम का चक्कर लगाना है, उसमें मुझे अपने के अंदर ना ये झांकना है, एक एक शक्ति कैसे मैं अंदर भरता जा रहा हूं, और उसके लिए कैसे स्वमान में हम स्थित होते जाएं, वो फिर 5 से 5 तक का समय है मन की दिनचर्या, वो मन की दिनचर्या को हम इस तरीके से सेट करें। जो भी व्यक्ति है, वस्तु है, कोई अपने लिए किसी को अगर हम चाहते हैं सहयोगी, उनके प्रति योगदान का कुछ थोड़ा सा समय निश्चित करके रखते हैं। फिर जो हमारी दिनचर्या सारे दिन भर की होती है अपनी आवश्यकता अनुसार सेवा की दिनचर्या, तो तन के साथ साथ मन की दिनचर्या भी अगर सेट होगी ना, तो क्या होगा कि कोई भी परिस्थिति आएगी लेकिन ये दिनचर्या सेट होगी तो तुरंत स्वस्थिति हमें घंटी बजा देगी कि ये पेपर आया है और इसको ये डील करना है, तुरंत ही वो परिस्थिति से पर आप प्रभावित होने से पहले, हार खाने से पहले ही हमें पता चल जाएगा और हम सावधान हो जाएंगे। बाबा ने कहा है कई बार कि जिनकी लाइन क्लियर होगी ना, उनके पैर ऑटोमेटिकली उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, उन्हें सोचना नहीं पड़ेगा ये करूं या ये करूं, नहीं, उनकी बुद्धि में टच ही वो होगा, बाबा टच ही वो कराएगा जो उन्हें सफलता दिलाने वाला होगा, जो उन्हें परिस्थिति पर विजय प्राप्त कराने वाला हो। बस एक बात है कि अपनी लाइन हमें क्लियर रखनी है। बाबा तो देता है समय पर चेतावनी देता है, लेकिन होता क्या है, हम उस चेतावनी को अनसुना जैसा कर देते हैं, ये मन का संकल्प है, और फिर कई बार परिस्थिति से हार भी खा लेते हैं। इसीलिए एक तन और मन की दिनचर्या को रोज हम सेट करें। दूसरी बात बाबा ने कहा है, हाँ बाबा मुरली, उसके बाद हम लोग मुरली सुनते हैं, तो मुरली जब सुनो ना तो केवल मुरली सुने ही नहीं, मुरली उस स्थिति में स्थित होकर के सुने। बाबा मानो सूक्ष्म बात की, वतन की बात या परम धाम की बात बता रहा है, उस समय हम आत्मा स्वरूप स्थिति में स्थित होकर के वो सुने। कभी सतयुग की बात, स्वर्ग की बात बता रहा है, बस हमने को वही डबल ताजधारी बन करके वैसा विजुअलाइज करें जैसे हम बाबा के श्री कृष्ण के साथ साथ वहां महलों में घूम रहे हैं, बगीचे में घूम रहे हैं। जो विजुअलाइजेशन है वो बहुत आवश्यक है। विजुअलाइजेशन माने कि जो बाबा कहता है ना, केवल कानों से न सुने, मन की दीवार पर उसका चित्र बना लें। बाबा ने कोई भी वर्णन किया किसी बात का, मानो कि बच्चे सतयुग में ये होगा, पुष्पक विमान होंगे, तो बस समझो, बस एक तो सुन लिया हमने, एक मन के अंदर भाव ला रहे हैं कि पुष्पक विमान में हम सैर कर रहे हैं, बाबा के साथ साथ जा रहे हैं। 36 प्रकार के, 56 प्रकार के व्यंजन हैं, बाबा ने कहा वो होगा, तो बस इमेजिन कर रहे हैं कि बहुत बड़ा, जैसे कि ना वो महल है हमारा, बगीचा है, उसमें कि सब राजे महाराजे मेरे साथ, हम सब मिलकर के इतने प्रकार के भोगों का, व्यंजनों का भोग लगा रहे हैं। तो क्या है, जितना अगर चित्रित कर लेते हैं, तो वैज्ञानिक भी बोलते हैं अगर चित्रित कोई बात कर ली जाती है मन के अंदर, तो वो उसमें परमानेंट छप जाती है, समय पर वो बाहर निकल आती है। आपने भी जो स्टूडेंट पीरियड में ना, हमें तो याद है जब हम लोग स्टूडेंट थे, तो जो किताब में लिखा हुआ होता था उसके साइड में ना, वहीं पर कोई उससे संबंधित चित्र बना लेते थे। मानो बाबा ने कहा बच्चे बैलेंस रखो, आज की मुरली भी बाबा की थी ना, तो बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस अगर रखना है, या स्व सेवा और विश्व सेवा का बैलेंस, तो एक तो याद रहा, या तो बैलेंस शब्द लिख लो, या उसकी बगल में एक छोटा सा तराजू जैसा बना के इधर याद इधर सेवा, बस वो चित्र कभी भी जीवन भर भूलेगा नहीं। तो उससे क्या होगा, याद और सेवा का बैलेंस सदा बुद्धि में बना रहेगा। तो अपने लिए खुद ही युक्ति रचनी चाहिए, वो युक्ति सभी के लिए समान नहीं होती, लेकिन जो चित्र होता है छोटा सा कोई भी, उस चित्र को वो बुद्धि में सदा के लिए छप जाता है। बाबा भी कैसे, कोई पेपर आता था मन का, और हर एक चीज की निशानी होती है। मुझे याद है जब पहले 63 में 64 में हम लोग आते थे बाबा के पास मिलते थे, यहाँ झोपड़ी में ही बाबा के पास मिलते थे, या कभी बाबा के कमरे में मिला करते थे, क्योंकि छोटी पार्टियां होती थी, 3-4 लोग होते थे, अगर ज्यादा होते थे 10-12 की पार्टी होती थी तो हम हिस्ट्री हॉल में मिलते थे। उस समय 10-12 की पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी समझी जाती थी, उस समय की बात है। तो बस बाबा के पास जब मिलते थे हम लोग देखते थे, हाँ बस बाबा किस प्रकार से बच्चों से मिला करते, बस पहले ही अगर यहाँ होते थे कई बार बाबा टहलते होते थे, मिल जाते थे, आओ बच्चे आओ, बाबा ऐसे वहां फैला देते थे, आओ मीठे बच्चे, बाहर जो चित्र लगा हुआ है ना आंगन में देखा होगा आपने, और बस ऐसी मैग्नेटिक पावर होती थी बाबा की कि बस उसमें खींच करके ना हम चले जाते थे। लेकिन वंडर तो तब होता था जब गए और उसके बाद हाँ बाबा बस थोड़े समय के लिए हम विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे, बाबा ने दृष्टि दी थोड़ी सी बस और एकदम देह का भान भूल जाता था। फिर क्या होता था हाँ? थोड़ी देर तक वो स्थिति का आनंद लेते थे, फिर बाबा यूं छपते थे, आओ बच्चे आओ आओ, फिर हम जैसे अपने को अशरीरी स्थिति में आत्मा को शरीर में लाने का प्रयत्न, कोई आत्मा शरीर छोड़ के नहीं जाती, देह का भान भूल जाता है, फिर आते थे बाबा टोली खिलाते थे, हालचाल पूछते थे, नाम पूछते थे, फिर एक जाता था दूसरा आता था, हर एक को विदेहीपन का अनुभव होता था। तो ये स्थिति है जिसको कहा जाता है बाबा के मन के संकल्पों की पावर इतनी शक्तिशाली होती थी कि दूसरे के संकल्पों को थोड़ी देर के लिए जैसे बिल्कुल स्टॉप हो जाते थे। यह है मन जीते जगत जीत की स्थिति। बाबा ने इतना मन को जीता, बाबा ये ही चाहता है, अभी बाबा तो है नहीं, दादियां भी हैं, दादियों से हम सभी अनुभव करते हैं, लेकिन हम सभी मास्टर ब्रह्मा हैं। हम सब भी जो ज्ञान में आ गए हैं, हमारे द्वारा अब दुनिया को ये अनुभव करना है, वो आए हमारे सम्मुख, बस हम उन्हें दृष्टि दे, थोड़े समय के लिए वो भी विदेही हो जाए, अशरीरी हो जाए, और अभी दुनिया अनुभव करना चाहती है, इसीलिए इससे ही बाबा की प्रत्यक्षता होगी। और ये कब होगा? जब हमारी स्वस्थिति बड़ी पावरफुल होगी, मन के ऊपर विजय प्राप्त की होगी, संकल्पों के ऊपर, और उसका प्रमाण हमने देखा, वैसे तो कई बार 62-63 से देखा, लेकिन अंतिम दो दिनों में हम 17 जनवरी की सुबह आ गए थे यहाँ पर, हम इंजीनियरिंग पास करने के बाद आसाम में हमारी पोस्टिंग हुई थी, और आसाम में हम थे तब आसाम में कोई भी सेंटर नहीं था, यह 1967 की बात, 1967 में हमने इंजीनियरिंग पास की और उसके बाद आसाम में पोस्टिंग हुई ONGC में, तो वहां पर थे। लेकिन बाबा यहां से ही हर सप्ताह में एक दो पत्र लिख के, बच्चे ये सेवा करो ये करो, और बस जो बाबा लिखता था हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करते थे, उसमें बहुत सफलता समाई होती थी, एकदम 3-4 महीने में ही 100-150 की क्लास जम गई वहां पर आसाम में, जहां भाषा की भी प्रॉब्लम, लेकिन ज्यादातर मारवाड़ियों की वो क्लास, और बस बाबा को लिखा करते थे, सारा समाचार दिया करते थे, और इस प्रकार से बाबा ने एक संदेश दिया हाँ जनवरी मास में ही सूक्ष्म की, भाई आओ बच्चे, हमने लिखा था बाबा को कि बाबा उधर देहरादून म्यूजियम बन रहा है, बहन जी का पत्र आया था, यहाँ छुट्टी लेके आ जाओ, तो हम छुट्टी ले रहे हैं वहां जाएं, तो बाबा ने इंडिकेशन दिया, हिंट दिया कि बच्चे वहां जाओ जरूर, लेकिन पहले यहां आओ और तुरंत आओ, प्लेन से आओ। तो देखो जनवरी की बात है, और हमने छुट्टी वगैरह ली और आ गए यहाँ 17 जनवरी की सुबह है, यहाँ अपने लौकिक पिताजी के साथ पहुंच गए, और दो दिन में बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था देखी। क्या उसमें अनुभव किया? हमेशा तो पहले जब भी मिलते थे बाबा को बताते थे, बाबा कहते थे हाँ बच्चे कैसी सेवा चल रही है, क्या पुरुषार्थ है, सब बताया करते थे, लेकिन उन दिनों में दो दिन में देखा बाबा कर्मातीत बन चुके थे पूरा, और बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा से हम ये पूछेंगे ये बताएंगे, बस ऐसे बाबा को थोड़ी सी दृष्टि दी, बाबा ने दृष्टि दी हमें, और बस बाबा कहते थे बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, ये कहने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी हमें एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी और बाबा मन के भाव को भी जान लेता था और उसका समाधान भी कर देता था। एक बार, दो बार, पूरे दो दिन में कम से कम 6-7 बार ऐसा हुआ। तो ये है कर्मातीत अवस्था। ये मन स्वस्थिति इतनी पावरफुल हो जाए कि बस कंप्लीट रीति से दूसरे के मन के भाव को जान ले, उसे एक शब्द भी कहने की जरूरत ना पड़े। जैसे कहते हैं ना, भक्ति मार्ग में भक्त होता था, कोई इच्छा होती थी भगवान के पास से वरदान मांगने की, बस भक्त गया और अपनी इच्छा प्रकट की, भगवान क्या कहते थे, एक ही अक्षर निकलता था, तथास्तु, वो अंतर्ध्यान हो जाते थे और भक्त की मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। लेकिन यहां तो देखा कि कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। 18 जनवरी की रात्रि को ना बाबा मुरली चला रहे थे, हम भी सामने बैठे हुए थे, मुरली सुन रहे थे। तो बस बैठे बैठे सुनते सुनते ही हमारे मन में संकल्प आया कि बाबा कुछ मेरे बारे में बोले। हरेक को दिल में होता है, अव्यक्त बाप दादा अभी भी आते हैं कि भाई स्टेज पे जाने का चांस मिल जाए, बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, बाबा कुछ पर्सनल, मुरली तो होती है लेकिन पर्सनल बाबा बोले। तो ऐसे हम भी तब तो बहुत यंग थे उस वक्त, 21-22 साल के थे, तो बाबा बोले, हमारे मन में संकल्प उठा, कुछ कहा भी नहीं, मुरली चल रही थी बाबा की, बाबा तक संकल्प पहुंचा और बाबा की इतनी क्लैरिटी कि तुरंत ही बाबा ने नाम लेकर के और तुरंत ही कुछ महावाक्य उच्चार दिए। अभी 18 जनवरी की रात्रि क्लास, अभी भी वो मुरली यहाँ ओम शांति भवन में नीचे वो जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पर, जहाँ ऑडियो सिस्टम है वहां पर 18 जनवरी की अंतिम मुरली, साकार मुरली, तो उसमें वो महावाक्य चित्रित है। तो भाव क्या है कहने का कि जब हम भी ना होंगे स्वस्थिति हमारी पास, हर एक चीज के कुछ लक्षण दिखने चाहिए कि हम कर्मातीत की तरफ जा रहे हैं, ऊंचा बन रहे हैं। और वो एक तो ये मन जीते जगत जीत, और बाबा ने इसके लिए बड़ा पुरुषार्थ किया। ये नहीं कि बाबा चूंकि शिव बाबा का रथ था इसके लिए ही हो गया। कई बार बाबा कहता था ना, मैं बाबा को कहता हूँ, बाबा मेरा इस खांसी पर तकलीफ देती है, इसका कुछ करो। तो बाबा क्या कहता था शिव बाबा, भाई ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है, ये तुम्हें ही चुकतू करना है और इसमें मैं क्या करूंगा, ये तो तुम्हारा। तो जब ब्रह्मा बाबा के लिए कोई कंसेशन नहीं, तो आपके या मेरे लिए कोई कंसेशन होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें हम कंसेशन एक्सपेक्ट ना करें शिव बाबा से। क्यों? क्योंकि 63 जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है, वो जिसने जो किया है वो उससे चुकतू करना ही है। हाँ, उसके चुकतू करने में बाबा के ज्ञान और योग से मदद जरूर मिलती है, हल्का हो जाता है, लेकिन माफी नहीं मिल सकती, वो तो चुकतू करना ही है। इसीलिए एक इस बात का वो ध्यान रख गया। तो बस बाबा का मैं बता रहा था कि ये अंतिम दिन बाबा ने कैसे ये देखा। हमने सम्मुख क्लास कर रहे थे और क्लास करते करते बस संकल्प आया, बाबा ने संकल्प कैच किया और तुरंत ही महावाक्य उच्चार दिए। उसके बाद बाबा मुरली से चला करके उठे। वैसे बाबा का ना जो है खांसी आती थी, कई बार आती थी, लेकिन 18 जनवरी की रात को जो बाबा ने मुरली चलाई उसमें एक बार भी खांसी नहीं आई, एक बार भी बाबा को गला साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो किस बात का प्रतीक है कि जब आत्मा कर्मातीत बन जाती है तो शरीर के सब कर्म भोगों के ऊपर वो विजय प्राप्त कर लेती है, फिर शरीर का कर्म भोग कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। जब तक कर्मातीत नहीं बनी है तब तक ये पेपर आता रहेगा, लेकिन जब एक बार कर्मातीत अवस्था के निकट पहुंच गई फिर ये भी कुछ नहीं, सब हिसाब किताब चुकतू हो जाते हैं। और क्या होगा कि ये आभास होना चाहिए कि हाँ बाबा, अब मैं जब स्वस्थिति परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगी, तो जो मैं बता रहा था, एक तो ये दिनचर्या अपनी सेट करे, दूसरा एक विचार सागर मंथन, वो ज्ञान की मुरली का जरूर करे, रोज एक दो पॉइंट लेके। मानो आज मुरली तो सबने सुनी होगी ना, अव्यक्त मुरली थी ना, किस विषय के ऊपर थी, संबंधों के ऊपर, संबंधों का त्याग, किस लौकिक और अलौकिक, जो बाबा ने कहा, और उसका क्या वरदान था, क्षमा भाव का। तो बस मानो क्षमा भाव का ही है, क्षमा कौन कर सकता है, क्षमा के ऊपर मानो आप विचार सागर मंथन करो, क्षमा कौन कर सकता है, है? जो रहम दिल है, और जिसमें भूलने की क्षमता है। अगर किसी ने मेरे साथ खराब किया, ज्ञान का है चाहे बाहर का है कोई, वो बार बार जब वो व्यक्ति सामने आएगा या उसकी बात सामने आएगी या उसकी याद आएगी, तो तुरंत ही वो हमें उसका किया हुआ जो गलत कार्य है, जो उसने हमें सताया है, वो याद आ जाएगा। अब बस हमारे मन में कहीं ना कहीं कुछ बदले की भावना, या अच्छा उसे भी मैं सिखाऊंगा, कुछ भी बात वो सामने आएगी। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक हम इसे बिल्कुल भूल नहीं जाएंगे। और जब भूलने का लक्ष्य रखेंगे, ये क्षमा भाव है, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं, क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर है वो क्षमा नहीं कर पाएगा, जो वीर है महावीर है वो ही क्षमा कर पाएगा। क्या हम सब कायर बैठे हैं? अगर किसी के लिए भी हमारे मन में अभी तक भी कोई भाव है, आज हम उसे यहां मधुबन में छोड़ करके जाएं, चाहे उसने कितना भी हमारे लिए गलत किया हो, हमारे मन में उसके प्रति बदले की भावना ना हो, कुछ सिखाने की भावना ना हो, बस भूल करके बाबा उसे भी सद्बुद्धि दो, उसके प्रति भी हमारी शुभ भावना और शुभकामना हो, क्योंकि बाबा तो हमें वीरों का वीर महावीर बना रहा है। इसीलिए एक तो ये लक्ष्य रखें, और तो विचार सागर मंथन, मुरली के कोई भी पॉइंट का लो, कैसे होगा? कई कहते हैं विचार सागर मंथन नहीं चलता, लेकिन विचार सागर मंथन के लिए चित्रों के, है ना, बड़े बड़े चित्र, अपने चित्र के सामने जाके बैठ जाओ और बस चित्र को देख करके बस अपने से ही बात करो, जैसे अपने को ही हम समझा रहे हैं। बाबा कई बार बताता है, मानो झाड़ के नीचे जाके झाड़ के पास बैठ जाओ, झाड़ का चित्र सामने है, बस ये कल्प वृक्ष की जड़ में मैं आत्मा बैठी हूँ, विजुअलाइज करो, जो नीचे चित्र है बाबा मामा के साथ, मेरा भी उसमें चित्र है, मैं भी एक आत्मा बैठी हूँ, मेरे आधार पर पूरी सृष्टि ये थमी हुई है, पूरा सृष्टि का झाड़ मैं इसका बीज स्वरूप हूँ, मैं इसका मुख्य तने के रूप में सारी सृष्टि को, तो अपने को इतनी महान स्वमान में लाओ, संकल्पों में लाए, वो चित्र सामने होता है तो विचार करना मुश्किल नहीं होता, बस जैसे समझा रहे हैं प्रदर्शनी में किसी को, ऐसे ही वो बार बार करते रहेंगे तो क्या होगा, दो चार दिन के बाद वो अपने आप ही मनन चलता रहेगा, चित्र सामने हो ना हो, और वो ही विचार सागर मंथन, फिर बाबा कहता है पांच धाम का, पांच स्थितियों का चक्कर लगा के आएंगे, वैसी स्थिति हो जाएगी। तो एक ये है विचार सागर मंथन, एक तीसरा ये है, ये स्थिति रहे मैं करावनहार। बाबा ने कहा तो कई बार है मैं आत्मा हूं, ये शरीर है, लेकिन मैं आत्मा इन नैनों के द्वारा देख रही हूं, इस शरीर के द्वारा कर्म करा रही हूं, मैं करावनहार हूं। बस ये स्थिति बार बार अगर आए, हर वक्त खाने के वक्त बैठे, मैं आत्मा इस शरीर को खिला रही हूं, तो जब करावन हर की स्मृति रहेगी ना, जो बाबा ने कहा है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट का अनुभव होगा, क्योंकि हम सब के सामने ना पेपर तो आए हैं शुरू से लेकर, लेकिन अभी दो पेपर सबके सामने विशेष अंत समय तक आएंगे। कौन से दो पेपर? एक है शरीर का पेपर, दूसरा है परिवार का पेपर। कोई ये ना समझे भाई मैं तो यंग हूं, मुझ में कोई बीमारी नहीं है, ये तो आत्मा से संबंधित पेपर है। आत्मा तो 63 जन्म विकर्म किए हैं, जो 84 जन्मों की पुरानी आत्मा है, इसीलिए इसने अनेक शरीर लिए हैं, उनके द्वारा विकर्म किए हैं। तो इस कारण से ये आत्मा, ये जो पेपर आएंगे ना, ये पेपर के में पास होने के लिए चाहे जवान शरीर है, लेकिन अंत समय में इतनी व्याधियां होंगी, इतने शारीरिक कष्ट होंगे, क्योंकि सारे जन्मों का हिसाब किताब इस अंतिम जन्म में ही चुकतू करना है। और उससे घबराए नहीं, बाबा ने कहा मेरे बच्चे जितने यहां हिसाब किताब चुकतू कर लेंगे, उतना उन्हें धर्मराजपुरी में कोई सजा नहीं खानी पड़ेगी, और बस आराम से मुस्कुराते हुए धर्मराजपुरी से पार हो जाएंगे। नहीं तो जो गायन है, मोचरा भी मिला और मानी टुकड़ भी, यानी सजा भी खाई और पद भी भ्रष्ट हो गया, क्या फायदा। तो यहां अगर होता है उसमें घबराना नहीं चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए। वाह बाबा, आप मेरे सारे हिसाब किताब यहीं चुकतू कर रहे हो, मैं आत्मा यहीं पावन बन रही हूं, बस अब तो मुझे कोई भी धर्मराजपुरी में चुकतू नहीं करना है, और हर चीज में पॉजिटिविटी देखते हुए हम पार हो जाए। तो इसीलिए शरीर का पेपर पार करने के लिए क्या करना है, अभ्यास। एक सेकंड में शरीर में आए, एक सेकंड में शरीर से न्यारे हो जाए। भाव क्या, हम देखते थे बाबा ना जब पार्टियों से मिलते थे, तो बस टाइम दिया होता था भाई 10 बजे बंबई पार्टी, 10:30 बजे दिल्ली पार्टी, 11 बजे अमृतसर पार्टी, ऐसे ऐसे। तो टीचर आती थी अपने समय पर, देखती थी बाबा तो बैठे हैं लेकिन जैसे विचारों में खोए हुए हैं, ध्यान में नहीं है लेकिन विचारों में खोए हुए हैं। तो वो आके कहती थी बाबा बाबा मैं पार्टी लेके आया हूं, तो थोड़ा बाबा को ना जैसे मतलब कोई ध्यान में नहीं होते थे लेकिन विचारों में इतने अशरीरी हो जाते थे। फिर बाबा के अच्छा बच्ची लाओ लाओ पार्टी को लाओ, पार्टी आती थी बैठती थी बाबा से बात करती थी, बाबा टोली देते थे मिलते थे, फिर वो पार्टी जाती थी 5-7 मिनट अगर बीच में बचे भी होते थे तो दूसरी पार्टी के आने का समय होता था, बाबा फिर देह से न्यारा हो जाता था। तो इसीलिए जब आवश्यकता हो हम देह में आए, जब आवश्यकता हो हम देह से न्यारे हो जाए। बाबा ने ये पाठ प्रैक्टिकल बाबा का देखने को मिलता था कि बाबा इस समय ना बिल्कुल देह से जैसे न्यारा है। तो ये बाबा ही हमारे सामने रोल मॉडल है। इसलिए एक तो ये पेपर हम इस रीति से बड़ी सहज रीति से पार कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, मानो शरीर में बहुत व्याधि है, दर्द है, टूट रहा है जैसे, लेकिन अगर शरीर से डिटैच होने का अभ्यास होगा तो शरीर में दर्द होगा लेकिन आत्मा को महसूस नहीं होगा। जब महसूस ही नहीं होगा, जैसे क्लोरोफॉर्म लगा दो या थोड़ा वो दे देते हैं ना ऑपरेशन वगैरह से पहले एनेस्थीसिया वगैरह, जिससे सुन्न हो जाता है, बस इंद्रियों से डिटैच हो जाता है। तो ऐसे ही ये स्थिति योग के द्वारा सहज ही हासिल हो जाएगी, तो जितना भी कुछ शरीर में व्याधि होगी महसूस ही नहीं होगी। तो इसलिए हिसाब किताब भी चुकतू हो रहा है और दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा है, इससे बढ़िया क्या बात। तो ये स्थिति लानी है जिससे हिसाब किताब भी चुकतू हो जाए, और ये तभी होता रहेगा जब थोड़ा सा भी समय मिले मैं आत्मा न्यारी हूं, मैं अलग हूं इस शरीर से, न्यारी हूं एकदम, मैं न्यारी हूं, डिटैच हूं, बस ये महसूस करो। और जितना जितना हम डिटैचमेंट का अनुभव करते जाएंगे उतना उतना शरीर के तरफ से कोई पेपर नहीं आएगा। और दूसरा परिवार का पेपर, क्योंकि परिवार में भी बड़ी उथल पुथल होगी, माया भी बहुत सूक्ष्म रूपों में आएगी, पुराने पुराने भी कुछ पत्ते हिलने लगेंगे, काफी हिलते हैं नए। तो संकल्प ये ना आए, अरे ये इतना पुराना 40 साल पुराना ये ऐसा बात करता है, ये बाहर का खाता है, ये पिक्चर देखता है, अगर किसी पुराने में है, लेकिन बाबा ने ये बताया हरेक अपनी राजधानी स्थापन करता है। बच्चे ये राजधानी स्थापन हो रही है, कोई ज्ञान की बात नहीं, अब उस आत्मा का साधारण पार्ट है सतयुग में, तो यहाँ तो उसका जीवन साधारण ही होगा, कोई धारणाओं में परिपक्वता ही नहीं होगी, कच्ची धारणाएं होंगी, क्योंकि उसका पार्ट वहां बिल्कुल साधारण है, झाड़ू लगाने वाले का पार्ट। लेकिन कोई दूसरा ये न सोचे इसका है तो मैं करूं, तो वो अपने पैरों पर खुद को लाड़ी मारेगा, क्योंकि अगर मैं राजा महाराजा होने वाला हूं तो मैं ऐसे आत्मा को क्यों फॉलो करूं। भले यहां पुराना है लेकिन अपने संस्कारों को, साधारण संस्कारों को परिपक्व कर रहा है। तो इसलिए परिवार वाला पेपर और शरीर का पेपर ये सबके सामने आने वाला है। तो एक ये हम ख्याल रखें जो बाबा ने कहा है कि इन पेपरों की तरफ से सावधान रहे। और क्या है, परिस्थिति से बचने के लिए पेपर आएंगे, लेकिन वो पेपर बाबा कहता है सूली से कांटा हो जाए। कैसे होगा, हम जब साक्षी दृष्टा की स्थिति में होंगे, कोई आए पेपर लेकिन हमें प्रभावित न कर सके। पेपर आया पानी पर लकीर की तरह चला गया, तो साक्षी दृष्टा क्या स्थिति है, इसमें पांच बातें हैं बाबा ने जो दिए हैं। देखो दृष्टा क्या, ये जो आंख है ना, ये है दृष्टि, खिड़की है, इस मकान की खिड़की है। तो खिड़की खुद नहीं देखती, खिड़की के पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति वो खिड़की के द्वारा देखता है। तो ये है दृष्टि, आत्मा है दृष्टा, इसीलिए कहते हैं साक्षी दृष्टा। आत्मा देख रही है इस खिड़की के द्वारा। और तीसरी चीज क्या है, दृश्य, जो खिड़की के बाहर सारे आंखों के सामने जो चीज आ रही है वो सब दृश्य है। और जितना हम इन दृश्यों को ना देख करके साक्षी भाव से देखेंगे, उतना क्या होगा, हमारा द्वापर युग से लेकर दृष्टांत बनेगा। जो द्वापर युग से इतिहास लिखा जाएगा उसमें जो भक्तों की बातें लिखी हुई हैं, भक्त को इस रीति से भगवान का अनुभव हुआ, साक्षात्कार हुआ, बहुत सारी बातें लिखी हैं, वो तब लिखी जाएंगी दृष्टांत, जब हमने ऐसी स्थिति में कार्य किया होगा कि मैं दृष्टा आत्मा दृष्टा इस दृश्य दृष्टि के द्वारा ये संसार के ये दृश्य देख रहा हूं। और ये दृष्टांत लिखे जाएंगे कब, जब पांचवी बात हमारा दृष्टिकोण जो है वो पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा। परिस्थितियां तो सब होंगी, लेकिन जो गीता में महावाक्य है केवल कहने के लिए लिखने के लिए नहीं है कि जो हो रहा है वो अच्छा है, जो होगा वो और अच्छा होगा आदि आदि, नहीं, हमारा दृष्टिकोण ही ऐसा बन जाए। खजाना जमा करने का ही साधन क्या है, बाबा ने एक लाइन में बताया है, हमारे सारे खजाना लीक होने का साधन क्या है और जमा होने का साधन क्या है, क्या है जमा करने का साधन, बड़ा बाबा ने कहा बिंदी लगाते चलो, बस एक लिखा, एक के आगे बिंदी लगाई दस गुना हो गया, एक और बिंदी लगाई सौ गुना हो गया, एक और बिंदी लगाई हजार गुना हो गया। ये खजाने जमा करने का साधन देख रहे हैं उसका हमारे ऊपर प्रभाव न पड़े, ऐसे दृष्टि होकर। और दृष्टा कैसे, हम सबको अभ्यास है, बस रोड पर जा रहे हैं, कोई भी एक्सीडेंट देखा, किसी का कुछ देखा, बहुत ही मतलब नुकसान होते हुए शरीर का या कुछ भी, हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उससे हमारा संबंध ही नहीं है, जानते नहीं। लेकिन हमारा अपना प्रियजन को थोड़ा भी कुछ हो गया, हुआ उसे, दर्द हमें होगा, क्यों, क्योंकि उससे संबंध है। तो हमें अब बाबा ने जो बोला, इन आंखों से जो देखते हो सब मरे पड़े हैं, तो ऐसी हमारी स्थिति साक्षी दृष्टा की हो जाए कि कुछ होता रहे लेकिन हमारी स्थिति पर उसका प्रभाव ना। इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे कोई मदद न करें, बाबा ने कहा रहम दिल बन करके सब करो लेकिन उसके प्रभाव में ना हो परिस्थिति के। तो इस कारण से जो ये पांच बातें साक्षी दृष्टा के लिए, दृष्टि दृष्टा दृष्टांत दृश्य और दृष्टिकोण, तो हमारा सारा आधार इस दृष्टिकोण पर है, कैसा हमारा एटीट्यूड है, कैसा हमारा एंगल ऑफ मतलब सीइंग द थिंग्स है, हम किसी बात को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। एक ये बात बाबा ने कही है। और बाबा ने क्या कहा है कि कोई भी परिस्थिति और कोई पेपर आता है ना, तो दो शक्तियों की एक विशेष आवश्यकता है अभी बच्चों को, और वो कौन सी होनी चाहिए? एक है परख शक्ति, निर्णय शक्ति। तो परख शक्ति अगर हमारी तीव्र होगी तो हम कोई पेपर आएगा उससे धोखा नहीं खाएंगे। परख शक्ति है, निर्णय शक्ति। ये बाबा ने कहा धोखा खाने वाला जो है ना वो कौन है? मूर्ख है। धोखा खाना मूर्खता है, धोखा देना वो धूर्तता है। जो धूर्त व्यक्ति होगा वो धोखा देगा। तो ना हमें मूर्ख बनना है ना धूर्त बनना है, बल्कि धोखे से बचना वो बुद्धिमत्ता है। तो पहले से हमें जब ये आभास हो जाएगा, वो कब होगा? जब हमारी निर्णय शक्ति और परख शक्ति ठीक होगी। और वो कम होने का क्या कारण है? हमारी एकाग्रता में कमी, पावर ऑफ कंसंट्रेशन कम है। तो अपनी एकाग्रता की शक्ति को अगर जितना हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? हमारी निर्णय शक्ति और परख शक्ति बढ़ती जाएगी और हम धोखा खाने से बचते जाएंगे। जैसे ही कोई परिस्थिति आई, पेपर आया, अगर हमारी ये कुशाग्र है, निर्णय शक्ति परख शक्ति, तुरंत हम सावधान हो जाएंगे और बाबा जैसे कि एक चेतावनी दे देगा और हमारे पांव उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी हो। एक ये पे उसकी जरूरत है। और दूसरा पेपर ये इसमें परिस्थिति रूपी पेपर से सफल होने के लिए, उस पर विजय पाने के लिए दूसरा कौन सी शक्ति की जरूरत है? सामना करने की शक्ति। जब पेपर आई गया तो कैसे हम उसका सामना करें? तो सामना करने के लिए कौन सा शक्ति की जरूरत है? सहज। बाबा ने बड़ा सहज बताया, कोई नहीं, बस तुरंत ही बाप का आवाहन करो। बाप का साथ अगर हमने छोड़ दिया माने छोड़ते नहीं है, लेकिन उस समय वो छूट जाता है। उस समय बाबा याद नहीं आता, कोई स्थूल याद आएगा, व्यक्ति आएगा, अरे भाई इसकी मदद मिल जाए, उसकी मदद। वो द्रौपदी की भी कहानी सबने सुनी हुई है ना, क्या द्रौपदी ने बोला कृष्ण जी को कि हे प्रभु, जब मेरा चीरहरण हो रहा था आपने आने में बहुत देरी की। तो क्या बोला कृष्ण जी ने कि हे द्रौपदी, तुम याद करो कि जब ऐसा अपमान हो रहा था तो तुमने किसको याद किया? तुमने पहले अर्जुन को याद किया, अपने पांचों पतियों को याद किया, द्रोणाचार्य को याद किया, भीष्म पितामह को याद किया। जब सब सिर झुकाए बैठे रहे, कोई भी तुम्हारी मदद को नहीं आया क्योंकि जुए में हार चुके थे, तो तुमने जब बहुत अंतर मन से मुझे याद किया तो मैं तो नंगे पैर दौड़ा आया और तुम्हें ये इतना साड़ियां दी जिससे तुम्हारे उसकी रक्षा हो सके। तो भाव क्या है? हमें भी समय पर बाबा याद नहीं आता। कोई स्थूल व्यक्ति जिसकी मदद हमें मिल सकती है, जो परिस्थिति से बचा सकता है उसको याद आएगा। और जब हम बिल्कुल हार जाते हैं तब हम बाबा को याद करते हैं, तो तब तक टू लेट हो चुका होता है। बाबा मदद तो करता है, लेकिन वो मदद जिस समय पर पहुंचनी चाहिए उस समय पर न पहुंच के थोड़े समय बाद पहुंची, तब तक अगर कुछ नुकसान होना होता है वो हो जाता है। इसीलिए बाबा कहता है एकाग्रता बढ़ाओ, दूसरा सामना करने की शक्ति बढ़ाओ। और ये सामना करने की शक्ति कैसे आएगी? जब हमारी परख शक्ति, निर्णय शक्ति कम, एकाग्रता बढ़ाएंगे, ये सामना करने की शक्ति आ जाएगी। तो इस रीति से और क्या अंत में मैं इसमें प्रकृति का पेपर, बस उसको मैं थोड़ा लेना चाहता हूं अंत में, क्योंकि जो भी पेपर आएंगे उनमें तो आपने सुना है, मुरली में भी आता है संबंधों का पेपर, किसी शरीर का पेपर, कोई भी पेपर, लेकिन सबसे बड़ा है प्रकृति का पेपर जो अभी अंत समय में आएगा। तो और आएगा, आता है, तो ये पांच तत्वों का पेपर, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, इनका पेपर अगर आएगा तो हम क्या करें? क्योंकि मानो हम जैसे अभी यहां बैठे हैं, आराम से सुन रहे हैं, सडनली अर्थक्वेक आया और ये छत गिरी, बड़े बड़े लोहे के गर्डर गिरे, हाहाकार मच रहा है, सब तरफ खून हो रहा है, बह रहा है, दर्द हो रहा है, ऐसे समय में अगर हमारे प्राण निकल गए तो क्या होगा? अंतमते सुगति हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। तो हमें ऐसा होना चाहिए कि हम भी भीष्म पितामह की तरह अपनी इच्छा से प्राण त्यागे, परिस्थितियों के कारण नहीं। अर्थक्वेक आया, सुनामी आई, फ्लड आया, उस कारण मरे तो अंत में तो जैसा परिस्थिति होगी वैसे अंतमति सुगति हो जाएगी, लेकिन भीष्म पितामह की तरह प्राण त्यागे वो कैसे होगा? जब ये प्रकृति जो है ना, इस प्रकृति को हम अपना मित्र बना लेंगे। मानो धरती है, हा? तो मित्रता सदैव एक जैसे गुणों वालों में होती है। शराबी की शराबी से मित्रता होगी, आध्यात्मिक व्यक्ति की आध्यात्मिक से। ऐसे ही धरती का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? है? सहनशीलता। और धरती है दाता, हमेशा देती है। देखो, जल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, उससे सब्जी मिलती है, फल मिलता है, सब चीज पैदा। तो धरती की तरह हम दाता बन जाए। जब हम दाता बन जाएंगे ना, कोई भी हमारे सामने आए खाली हाथ ना जाए। तो उससे क्या होगा? जब हम दाता बन के सबको देते चलेंगे, कोई स्थूल चीज देने की बात नहीं है, लेकिन क्या देने का है? शुभ भावना, शुभ कामना, सहयोग, रहम दिल की भावना जो बाबा ने बताई ना, उनको क्षमा करते जाएं, शक्तियों का दान देते जाएं, तो क्या होगा? इसका मतलब धरती का गुण धारण कर लिया, तो धरती की तरफ से जब भी पेपर आएगा ना, तो वो पहले ही हमें आभास हो जाएगा। जैसे हम लोगों को पढ़ाया गया था एमटेक में, इंजीनियरिंग में, कि ये कुछ जो जानवर होते हैं ना, इनकी जो सेंसिंग पावर है ज्यादा पावरफुल है। जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तो क्या होता है, इन्हें पहले से आभास हो जाता है। कई जानवर होते हैं, छिपकली है, सांप है, और पशु हैं, कई आती हैं, तो बस ये अपना बिलों से बाहर आ जाते हैं, सेफ जगह चले जाते हैं। बहुत ये, और टेक्निकली वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर मोर इन हार्मनी विद नेचर, प्रकृति के साथ ज्यादा निकट है। इसलिए हम भी अपना जीवन प्रकृति के साथ निकट बनाते चलें। धरती के जो गुण है, सहनशीलता है, दातापन का गुण है, आदि आदि बहुत है, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, समय हो गया। तो वो हम धारण करते चलेंगे, तो धरती की तरफ से जब भी कोई पेपर आएगा, अर्थक्वेक होगा, ऑटोमेटिकली हमारे पांव उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। हमें सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत सारी घटनाएं हैं यज्ञ में, पेपर लेटर आते रहते हैं, घटनाएं, चाहे लाटूर का अर्थक्वेक का आया होगा, चाहे गुजरात का आया, चाहे अलग अलग जगह का, कोई भी घटनाएं हुई, लेकिन बाबा ने कैसे अपने बच्चों की रक्षा की? बस लाइन क्लियर हो। ऐसे ही जल का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? शीतलता। और जल का सबसे बड़ा गुण है एडजस्टमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, ये गिलास है ना, गिलास में जल लो, गिलास में सेट हो जाएगा, थाली में लो, थाली में, चम्मच में लो, चम्मच में, कटोरी में लो, कटोरी में, हर जगह जल अपने को एडजस्ट कर लेता। ऐसे अगर हमने भी एडजस्टमेंट की शक्ति, फ्लेक्सिबिलिटी की गुण धारण की होगी, हर व्यक्ति के साथ हम अपने संस्कार मिला करके चल सकें, तो क्या होगा? जल की तरफ से जितने पेपर आएंगे, चाहे सुनामी आए, चाहे फ्लड आए, चाहे जितना भी आए, लेकिन जल हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जल को हमने अपना मित्र बना लिया, जल का गुण हमने धारण कर लिया, तो जल कभी भी हमें दुख अशांति नहीं दे सकता, जितना बड़े से बड़ा आएगा। यही तो प्रकृति पर विजय है, और यही ब्रह्मा बाबा ने पाई, वो मैं आपको दो मिनट में बताता हूं कैसे ब्रह्मा। ऐसे ही वायु का सबसे बड़ा गुण क्या है? हल्का रहना। वायु हर चीज को ऊपर उड़ाती है, पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है। ऐसे हम हर परिस्थिति में वायु की तरह सदा हल्के रहे, भारी ना हो, मूड ऑफ हो जाना, खाना ना खाना, बात ना करना किसी से, कोई भी चीज होती है, ये है भारीपन का प्रतीक। पेपर आएंगे, परिस्थिति आए, लेकिन हम सदा हल्के रहेंगे, तो वायु का गुण धारण कर लिया, तो चाहे अंत समय में बहुत सारे साइक्लोन आएंगे, बहुत सारे बवंडर आएंगे, वायु के तूफान, हवा भी 300-400 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी, लेकिन वो हमारा बाल बांका नहीं कर सकती, क्योंकि हमने वायु का गुण धारण कर लिया, हल्के रहना सीख लिया, तो वायु कभी भी हमारे विरुद्ध नहीं जा सकती। ऑटोमेटिकली हम सेफ्टी की तरफ, हमारे बुद्धि का संकल्प हमें ले जाएगा। ऐसे ही सूर्य का सबसे बड़ा गुण क्या है, अग्नि का सबसे बड़ा गुण हर चीज का रूप बदल देती है। अग्नि में कोई चीज डालो उसका रूप बदल जाता है। ऐसे अगर हमने भी योग रूपी अग्नि जलाई हुई होगी, जो ज्वालामुखी योग बाबा कहते हैं, तो किसी के भी रूप बदलने की क्षमता हो। बाबा कहते हैं रोता हुआ व्यक्ति आए और हंसता हुआ जाए, अशांत आत्मा आए शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए। कब होगा उसका रूप, कब बदलेगा? उसका रूप बदलने के लिए हमें ज्वालामुखी अग्नि ऐसी धारण करनी पड़ेगी, और जब ज्वालामुखी ऐसा रूप धारण हो जाएगा तो वो ही बाबा की प्रत्यक्षता का साधन है। भाषणों से नहीं होगा, लेकिन अनुभव के द्वारा वो आए, एक एक व्यक्ति को देखें, अरे भगवान को मैं सब जगह ढूंढता था तो भगवान तो इनमें है, इनके सानिध्य में आके मुझे इतनी शांति का शक्ति का एहसास हो रहा है। एक ये है, और अंतिम कौन सा गुण है, अंतिम तत्व आकाश। आकाश का क्या गुण है, विशालता। ऐसी बाबा चाहता है बच्चों का भी हृदय इतना विशाल हो जाए ना, हर चीज को वो समा ले, किसी की कमी कमजोरी उसको न देखें, उसका अवगुणों का चिंतन न करें, बल्कि उसको समा करके क्या करें, बिल्कुल वो ऐसा स्वरूप धारण कर लें, विशालता धारण कर लें, कि बस उससे क्या होगा, आकाश मार्ग से आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, रॉकेट है, बम है, मिसाइल्स हैं, क्लाउड बर्स्ट है, बादल फटना है, ये सब जो मृत्यु का कारण है, आकाश की तरह विशालता धारण की होगी तो कोई भी हमें वो नहीं करेगा। तो ब्रह्मा बाबा ने ये सब गुण कैसे धारण किए थे, उसका रूप क्या, कि 18 जनवरी को बाबा ने रात्रि क्लास कराई और उसके बाद उठ के बाबा अपने कमरे में गए। बाबा का कमरा आपने देखा है ना, पहले इतना बड़ा नहीं था, बस उतना ही था जितना पलंग पड़ा हुआ है, बहुत छोटा सा कमरा, पीछे की तरफ से एंट्री थी, बैठने का जहां है ये सब तो बाद में बनाया है। अपने कमरे में गए, दादी जी प्रकाशमणि जी साथ में, दादी के हाथ में हाथ, और देते हुए सारी विल को ट्रांसफर करते हुए बाबा ने जैसे शरीर त्याग दिया। लेकिन आश्चर्य तो उसके बाद देखा कि बाबा का ये शरीर 18 जनवरी को जो बाबा ने अर्ली नाइट में छोड़ा, 18 जनवरी की रात को रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 का सारा दिन, और 21 को दोपहर को लगभग 2 बजे बाबा का संस्कार किया गया। इतना 65 घंटे तक कोई इंजेक्शन नहीं दिया, कोई केमिकल लोशन नहीं लगाया गया, लेकिन बाबा का शरीर वैसे ही चमकता हुआ, कोई दुर्गंध नहीं, कोई कालापन नहीं। सबसे बड़ी बात, बाबा के शरीर में काफी फ्लेक्सिबिलिटी थी, नहीं तो शरीर तो कुछ घंटे में ही अकड़ जाता है। लेकिन काफी, जब हम लोगों ने स्नान कराया 21 तारीख को दोपहर, तो शरीर में काफी हद तक भी फ्लेक्सिबिलिटी थी, चमकता हुआ शरीर, जैसे बाबा अभी विश्राम कर रहा है। तो ये है प्रकृति पर विजय का प्रतीक, स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति, शरीर के और कई परिस्थिति, लेकिन प्रकृति रूपी परिस्थिति जब आए उस पर विजय बाबा ने पाई, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा हमने कि इतने घंटों के बाद भी बाबा का शरीर वैसे ही चमकता रहा। तो यह प्रकृति के तत्वों पर विजय, तो हम भी अगर इन तत्वों को रोज कम से कम 5-7 मिनट रोज योगदान करें, जल अग्नि वायु इनके गुणों का स्मरण करते हुए, अपने अंदर उन गुणों का आवाहन करते हुए इन तत्वों को रोज योगदान भी करें, और ये जो तत्वों के गुण है हरेक अपनी अपनी डायरी में सोच सोच के कम भी 5-5 गुण याद करके जरूर लिखें। यहां तो हमने एक एक गुण का वर्णन किया समय के अभाव में, लेकिन हरेक कोई जानता है जल में और क्या गुण है, वायु में और क्या, अग्नि में, तो इस तरीके से, और उन गुणों को धारण करते चलेंगे तो हम स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति पर, क्योंकि ये परिस्थिति प्रकृति की ऐसी है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और परिस्थितियां तो फिर भी कंट्रोल में है, लेकिन कब अर्थक्वेक आ जाए, कब फ्लड, बाहर की परिस्थिति है ना। लेकिन इस पर विजय पाने का साधन ये ही है कि हम उनके गुणों को धारण करते चले, उनको रोज योगदान करते चले। और बाबा हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है कि बाबा ने कैसे विजय प्राप्त की। तो इस प्रकार से हम अपनी स्वस्थिति के द्वारा हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करके बाबा के समान कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति।